ओम शांति। आज का जो ये विषय है मैनेजिंग चैलेंजेस, आप लोगों को उसमें दिख रहा है ना टीवी पे? ओके। इसकी शुरुआत हमने हमारी आदरणीय विमला दीदी को कहा कि आप 15-20 मिनट थोड़ा अपना अनुभव सुनाओ और फिर मैं एक घंटा ये सेशन लेऊंगा और लास्ट में हम फिर 20-25 मिनट का एक मेडिटेशन सेशन रखेंगे जिसके लिए हमारे बीच में पुष्पलता बहन आएंगी। हमने विमला दीदी को इसलिए इनवाइट किया था क्योंकि जो ये सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, जैसे आप लोगों को कल हिस्ट्री सुनाई थी कि ये 2001 में बनी, लेकिन उसका भी जो फाउंडेशन है, उसका बीज, वो हम उसके निमित्त हमारी आदरणीय विमला दीदी बनी। विमला बहन ने बहुत वर्षों तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो 2001 में आप नेवी में, नेवल हेडक्वार्टर में डायरेक्टरेट ऑफ नेवल ट्रेनिंग के उधर कार्यरत थी, तो आपने वहां उस समय जो हमारे नेवी के प्रिंसिपल डायरेक्टर नेवल ट्रेनिंग थे, कमोडोर बाजवा थे, उनको इनवाइट किया था माउंट आबू में एक प्रोग्राम के लिए। एजुकेशन विंग का प्रोग्राम था, तब हमारे पास सिक्योरिटी सर्विस विंग थी नहीं। तो जब वो कमोडोर बाजवा सब इधर आए और 3 दिन वो इधर रहे, एजुकेशन विंग का सारा प्रोग्राम अटेंड किया, तब उन्होंने कहा, हमारे जो अशोक गावा जी हैं वो इधर ज्ञान सरोवर में होते थे, तो उनको उन्होंने कहा कि आप लोग इतनी सारी विंग्स बनाते हो, इतने सारे आप प्रोग्राम करते हो, लेकिन इन सब समाज के अलग अलग वर्गों में सबसे ज्यादा जरूरत सिक्योरिटी फोर्सेस को है और आपकी कोई भी ऐसी विंग नहीं है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई कार्य करती है। तो कमोडोर बाजवा जो प्रिंसिपल डायरेक्टर नेवल ट्रेनिंग थे, उनके मोटिवेशन से, उनकी एक शुभ भावना से इस सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की स्थापना 2001 में हुई और इसीलिए हम सब आदरणीय विमला दीदी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तालियों से एक बार और दीदी का धन्यवाद करेंगे। तो आज का जो सेशन है मैनेजिंग चैलेंजेस, मैंने इसलिए ये प्रेजेंटेशन का भी रखा है, एक छोटा बोर्ड भी रखा है, क्योंकि मैं ही बोलता रहूं तो वन वे टॉक हो जाएगा। तो एक छोटी छोटी एक्सरसाइज कुछ मैंने रखी है जिसमें मैं कुछ चीजों को ऊपर हाईलाइट करूंगा कि आज के जीवन में जो चुनौतियां आती है वास्तव में क्यों आती और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। पहले आप समझते हो कि आज का लाइफ और कुछ समय पहले की लाइफ में, आज जीवन में ज्यादा डिफिकल्टी है या ज्यादा चैलेंज है या ज्यादा चुनौती है? अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं, आज का जीवन पहले के जीवन से आसान है या मुश्किल है? समझो अगर 150 साल वर्ष पहले का अगर हमारा जीवन है, उस समय ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे, तो वो लाइफ और आज की लाइफ में आज का हमारा जीवन ज्यादा आसान है या ज्यादा मुश्किल है? आसान है। मुश्किल है? अच्छा, आसान है जो बोलते हैं वो हाथ खड़ा करें, आसान है। अच्छा ठीक है, और मुश्किल है? अच्छा हाँ जी, दोनों ही है, सर्दी और गर्मी दोनों हो सकती है, खुशी और गम दोनों साथ में हो सकता है, दोनों विपरीत है ना, आसान और मुश्किल विपरीत शब्द है, तो दोनों हो सकता है। हाँ अच्छा ओके ओके। तो वैसे हाथ जब खड़ा किया तो मेजोरिटी ने मुश्किल बोला था, काफी लोगों ने आसान बोला, मुश्किल उनसे थोड़ा ज्यादा बोला और कुछ लोगों ने तो हाथ ही नहीं खड़ा किया, उन लोगों के लिए बीच वाली पार्टी है, पता नहीं। तो इन्होंने जो बात बताई वो सही बात बताई, जीवन दो स्तर पर है, एक फिजिकल लेवल पर है। तो फिजिकल लेवल पर आजकल साधन बन गए, आज कहीं से कहीं जाना, हमारे पास गाड़ियां हैं, स्कूटर, कार, ट्रेन, प्लेन, हमको किसी से बात करनी है आजकल मोबाइल है, आपको सर्दी लग रही है आपने हीटर ऑन कर दिया, आपको गर्मी लग रही है आप फैन ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया। तो साधनों के कारण हमारा जीवन आसान हो गया फिजिकल लेवल पर, लेकिन मुश्किल किस लेवल पर हुआ है? मानसिक लेवल पर। मानसिक लेवल पर जीवन कॉम्प्लिकेट हो गया। और आप समझते हो ना, स्ट्रेस जब होता है तो स्ट्रेस कहां होता है? स्ट्रेस माइंड में होता है ना, तो मानसिक स्तर के ऊपर जीवन मुश्किल हो गया और कॉम्प्लिकेट हो गया। समझते कॉम्प्लिकेट हुआ है? पहले देखो, किसान होते थे, एक सिंपल लाइफ थी, थोड़ा सा चीजें होती थी, उसके अंदर जीवन समा जाता था। आज तो व्यक्ति बड़ा हो रहा है कि पढ़ाई कौन सी करें, कौन सी स्कूल में जाएं, कौन सा वो स्ट्रीम लें, कौन सी किस तरह का जॉब करें, किस फील्ड में जाएं, किस एरिया में जाएं, कितनी सारी चीजें है ना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कुछ समय पहले हम लोग एक प्रोग्राम के लिए गए थे, आर्मी की कोई यूनिट थी, बहुत रिमोट जगह भी थी, मैं था और मेरे साथ एक और साथी था। बहुत लंबी यात्रा के बाद जब वहां पहुंचे तो वहां जो जहां हमको अकोमोडेशन दिया वहां वो स्टीवर्ड आया और उसने कहा कि साहब आप लोग काफी दूर से आए हो, थक गए होंगे, तो मेरे साथी से पूछा कि आपको क्या चाहिए, ठंडा चाहिए गर्म चाहिए। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो कुछ गर्म दे दो। तो थोड़ी देर बोले सर आपको चाय चाहिए कॉफी चाहिए, तो उसने बोला आप चाय दे दो। बोले सर चाय आप शुगर के साथ लोगे बिना शुगर के साथ, बोला शुगर दे दो। बोले सर एक चम्मच या दो चम्मच, बोला एक चम्मच दे दे दो। सर विद मिल्क और विदाउट मिल्क, तो तब तक मेरे साथी का तो टेम्परेचर बढ़ रहा। फिर बोला सर वो हमारे पास ऐसे ग्रीन टी भी है, तो तब तक उसने बोला यार तू क्वेश्चन ही पिलाता रहेगा, चाय पिलाएगा। अब एक सिंपल कप चाय के ऊपर कितना हम लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। मेरे बचपन में मुझे इतना याद है कोई मेहमान आता था एक क्वेश्चन जरूर पूछते थे ठंडा या गर्म, और गर्म का मतलब होता है एक कप चाय आती थी बस, ये चीनी हो नहीं हो ये सब कभी कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। तो आज हम लोगों ने जीवन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब तो लाइफ जो डिफिकल्ट हुए वो मेंटल लेवल पे हुए। और मैंने एक नेट पे एक चित्र देखा था, शायद किसी और ने भी आपको दिखाया हो, जिन लोगों का जॉब होता है ना 7 दिन का मंडे से संडे का, तो ये चित्र दर्शाता है उनका जो लाइफस्टाइल है ना, उनका चेहरा देखो, मंडे को चेहरा कैसे होता है, ट्यूसडे को कैसा होता है, वेनेसडे को कैसा होता है, थर्सडे को कैसा होता है, फिर फ्राइडे को, सैटरडे को तो एकदम खिला हुआ, संडे सवेरे भी खिला हुआ, संडे रात को फिर क्या होता है, क्योंकि अभी क्या आने वाला है, मंडे आने वाला है ना। तो मंडे से संडे उनका चेहरा बदल रहा है, क्यों, क्योंकि मंडे को सबसे ज्यादा प्रेशर है, ट्यूसडे को अलग काम है, फ्राइडे को फिर अभी वीकेंड चालू होने वाला है, सैटरडे को फिर वीकेंड है, संडे को सवेरे तक भी खुशी है, संडे रात को फिर घबराहट, अभी क्या आने वाला है। तो मंडे से संडे को उसका पूरा चेहरा, उसका पूरा मूड बाहर की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदल रहा। तो कई बार हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन फौजियों को पूछते हैं कि अभी आपका इसमें से कौन सा चेहरा है, मंडे से संडे कौन सा चेहरा रहता है आप लोगों का, तो वो बोलते हैं कि सर हम लोग तो 7 दिन काम करते हैं, 7 डेज हम लोग ड्यूटी पर हैं, 24 आवर्स ड्यूटी पर है, तो हमारे लिए सभी कुछ बराबर है। लेकिन इसमें चॉइस है, आपकी 24 आवर्स आप ड्यूटी पे हो, 7 दिन आप ड्यूटी पे हो, आप 7 दिन आप मंडे जैसा चेहरा रख सकते हो या सैटरडे जैसा चेहरा रख सकते हो, ये चॉइस आपके पास है। तो यहां हम जो चीजें सीखते हैं उसके आधार पर आप ये अपने आप चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हो कि किस तरह का आप चेहरा रख सकते हो। अच्छा, ये चेहरा भी क्यों बदल रहा। देखो, कोई भी कमजोर चीज होती है वो बाहर से इन्फ्लुएंस होती है, बाहर के प्रभाव में आती है। मैं जा रहा हूं, मेरे साथ एक और साथी जा रहा है, बारिश हुई, हो सकता है मैं बारिश इंजॉय कर रहा हूं और दूसरा व्यक्ति होगा उसको सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा, दोनों बारिश में थे लेकिन एक ने इंजॉय किया और दूसरा बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई, क्या रीजन था, बारिश सेम थी, दोनों गए थे, दोनों के ऊपर बारिश आ रही थी, एक बीमार हो गया और एक तो एंजॉय कर रहा था, क्या डिफरेंस था दोनों में, कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो थी, मेरी ज्यादा स्ट्रांग थी, उसकी कमजोर थी, कमजोर थी तो बाहर के एनवायरमेंट का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो अगर आप कमजोर होंगे तो बाहर की परिस्थितियां आपको इफेक्ट करेगी, मंडे का प्रेशर ज्यादा है आपका मूड ऑफ हो जाएगा, किसी ने आपकी थोड़ी तारीफ की तो आप खुश हो गए, किसी ने थोड़ा सा आपके लिए उल्टा बोला आपका पूरा दिन चेहरा मुरझा जाएगा। तो जैसे कि हमने हमारी मूड का, हमारी खुशी का रिमोट किसी और को दे रखा, वो जो बटन दबा रहा है वैसे तारीफ कर रहा है, हम खुश हो रहे हैं, कुछ ऐसा बोल दिया हमारा मूड ऑफ हो रहा है। अगर मैं कमजोर हूं तो मैं सब चीजों के प्रभाव में आऊंगा। तो ये संडे से मंडे, मंडे से संडे का ये जो हो क्यों रहा है, क्योंकि व्यक्ति कमजोर है तो हर चीज का प्रभाव पड़ रहा है। और जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा उसकी विशेषता होगी कि वो प्रभावित नहीं होगा लेकिन उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर आएगा। तो हमें जीवन में शक्तिशाली बनना है, नहीं तो हम हर चीज के इन्फ्लुएंस होंगे, और आजकल ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आप हर चीज के इन्फ्लुएंस में होंगे तो आप सदैव आपका चेहरा यहाँ मंडे जैसा रहेगा। ओके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी एक वॉलंटियर सामने से कोई भी आ सकता है। ये बोर्ड में आपको 9 डॉट बनाने, जैसे वो बने हैं ना 9 डॉट बनाने, एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, हो सकता है आप लोगों में से कईयों ने देखी हो, किसी ने देखी है, उसको 9 डॉट एक्सरसाइज बोलते हैं। ऐसी ऐसी जैसी वो 9 डॉट है ना, वैसे 9 डॉट बनाना। ये एक्सरसाइज देखी है किसी ने, इसको 9 डॉट प्रॉब्लम बोलते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में करना क्या होता है, आपने देखी है, गुड। तो इस एक्सरसाइज में करना क्या है कि आपको सारे डॉट्स को मिलाना है। शर्त यह कि आपको चार ही लाइन में मिलाना है, चार स्ट्रेट लाइन में। और एक बार आपने पेन नीचे रख दिया तो आप पेन नहीं उठा सकते, है ना। तो मैं समझता हूं, हाँ उसमें दिख रहा है ना, ओके, नहीं तो आप ये दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई। अच्छा, जो बना रहे हैं आपका क्या नाम है, मुकेश। तो मुकेश आपको प्रॉब्लम समझ में आई, क्या प्रॉब्लम है, इसको चार लाइन में आपको जोड़ना है, चार स्ट्रेट लाइन में। एक बार आपने पेन रख दिया तो आप पेन नहीं उठा सकते, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। हा? तो आप करके दिखाओ, ट्राई करो, वो वाला दिखाना, तो सब लोग देख रहे होंगे, सब देख सकते हैं कैसे ट्राई कर रहे हो। चार लाइन में आपको करना है, सारे डॉट्स को जोड़ने हैं। ओके, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। तो क्या हुआ, एक डॉट बच गया। आप उसको मिटा के वापस 9 डॉट्स रख दो, है ना, वो डस्टर है, आप यूज कर लो डस्टर। तो प्रॉब्लम समझ में आई, 9 डॉट्स है, चार लाइन में मिलाना है, बस ये है कि एक बार आपने पेन रखा तो आप पेन नहीं उठा सकते, है ना? बाकी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी दिशा में जा सकते हो। कौन ट्राई करेगा, आइए। आपने प्रॉब्लम पहले देखी है कभी, पहली बार ट्राई कर रहे हो, ओके चलो। क्या नाम है आपका, विपिन, विपिन के लिए तालियां बजाओ, विपिन ने हिम्मत रख के आया है। ओके, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, कितने डॉट बच गए, दो, है ना। ओके, वापस मिटा दो, 9 डॉट वापस कर दो। अच्छा, और किसी ने भी हाथ उठाया था, आप भी पहली बार देख रहे हो ये प्रॉब्लम, अच्छा चलो आइए, इनके लिए भी ताली बजाओ। अच्छा, वो उधर दिखाइए, सब लोग देखेंगे ना वो वीडियो दिखा, हाँ चलो स्टार्ट करो। ओके, एक लाइन, अरे अरे हवा में आप पेन नहीं उठा सकते ना, आप नीचे तक गए, नहीं नहीं आप उधर नीचे से उधर ऊपर कैसे पहुंच गए, हाँ फिर वहीं से कंटिन्यू करना है ना, हाँ आप उठा नहीं सकते पेन, हाँ अभी दूसरी लाइन, ओके तीसरी लाइन, एक और लाइन, चार लाइन, तो क्या कितने डॉट बच गए, हा? अच्छा बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। अच्छा वहां से ट्राई करेंगे कोई, मैडम एक बार मैडम को चांस देते हैं, पहली बार कर रहे हो आप भी, ओके चलो, हा? मैं अभी मैडम को एक चांस देते हैं, ठीक है। और मैं समझता हूँ इसके बाद हम एक और ट्राई करेंगे फिर, नहीं तो है ना पूरा टाइम इसी में चली जाएगा। ओके ओके ओके, पहली लाइन, 1 2 3 4 5, पांच लाइन हो गई ना, ठीक है आप मिटा दीजिए। एनीवे मैडम के लिए ताली बजाइए। ओके अच्छा, कोई लास्ट एक अटेम्प्ट, आपने तो पहले देखा हुआ है ना प्रॉब्लम, ओके तो अभी हम उन्हीं को बुलाएंगे जिन्होंने पहले देखा हुआ है, तो वो हम सबको बताएंगे, आइए। हाँ आप पहली बार ट्राई कर रहे हो, चलो एक और, क्योंकि मैडम एक तीन चार भाई आए तो एक और बहन को चांस देते। एक दो तीन चार, मैडम के लिए ताली बजाओ। अच्छा मैडम ये पहली बार देखा आपने, ओके फिर तो एक और बार ताली बजाओ। ओके तो इन्होंने जो किया मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, क्योंकि कई लोगों को स्पष्ट दिखा नहीं होगा, है ना। ये वाला देखो, देखो पहली लाइन उन्होंने ऐसे बनाई है ना, फिर उन्होंने दूसरी लाइन बनाई, ठीक है, फिर उन्होंने तीसरी लाइन बनाई, फिर उन्होंने चौथी लाइन बनाई, ठीक है। तो उन्होंने चार स्ट्रेट लाइन में सारे नाइन डॉट्स कवर कर लिए, और आप लोग ने सबने कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाए, क्या रीजन था? हाँ, क्योंकि मैंने जब आपको ये प्रॉब्लम रखी थी तो मैंने कहा था कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, किसी भी दिशा में जा सकते हो, लेकिन आप सबने अपना माइंड एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा था। आप उस बॉक्स में कभी यहां से स्टार्ट कर रहे हो, कहीं वहां से स्टार्ट कर रहे हो, जब तक आप उस बॉक्स के बाहर नहीं जाओगे तब तक आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो कभी कभी हम इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो मैंने ये जो आपके सामने ये जो एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी, ये इस बात के लिए रखी कि आज हमारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ रही, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं और बहुत नए चैलेंजेस आ रहे हैं, और हम उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, अपनी शक्ति के हिसाब से हम उसको ओवरकम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम ओवरकम करते हैं आज तक जितना मुझे समझ में आता है, जितना मुझे मालूम है, जितना मुझे बताया गया है, मैं सिर्फ उस दायरे के अंदर रहकर उसको सॉल्व करने की कोशिश। तो हम लोग कई बार कहते हैं आज जीवन में जो एक चीज मिसिंग है वो है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी वो मिसिंग लिंक है। आज के समय में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिकता में, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि आज तक हमने आध्यात्मिकता को जीवन में यूज करके समस्याओं को ओवरकम करना ऐसा कभी सीखा नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी स्पीकर है जिनका आज कोइंसिडेंटली आज उनका ही सेशन था, शिवानी बहन का, लेकिन उनकी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम है, आईज में उन्होंने कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसके कारण वो नहीं आ पाई। तो सिस्टर शिवानी पिछले 12 वर्षों से टीवी में बहुत प्रोग्राम कर रही है और बहुत पॉपुलर हुई, और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि वो स्पिरिचुअलिटी को कैसे जीवन में यूज करें और कैसे हमारी डे टू डे लाइफ को में जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करें, वो जब समाधान बताती है तो सब तब सब लोगों को लगता है कि हाँ आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है जो हम जीवन में अपनाएंगे तो हम कई सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं, और उसके कारण वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो आज हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी कमी है वो है कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिकता को थोड़ा सा दूर कर दिया ना, तो जब हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, ये थोड़ा सा कट क्यों हो रहा है, थोड़ा साइज है, ओके ओके, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, वो दिख रहा होगा यानी आ रहा है, ओके। तो स्पिरिचुअलिटी कई बार हम लोग जब किसी को बोलते हैं ना आध्यात्मिकता मिसिंग है, जीवन में आध्यात्मिकता होती है, होनी चाहिए, तो जब स्पिरिचुअलिटी वर्ड सुनते हैं तो सोचते हैं कि शायद आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज है जो एक कॉमन व्यक्ति के जीवन के बस की बात नहीं है, शायद उसके लिए सब कुछ छोड़ के कहीं जाना होगा, जंगल में जाना होगा। लेकिन यहां आकर हमको एक चीज समझ में आता है, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी यानी स्पिरिट की एक्चुअलिटी, स्पिरिट यानी सेल्फ, स्व के बारे में जानना, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। तो हम उसी को कहते हैं कि सेल्फ के बारे में अगर आपका नॉलेज है, अपने बारे में मैं कौन हूं, मेरी क्या विशेषताएं हैं, मेरे क्या गुण है, मेरी क्या क्वालिटीज है, अपने बारे में जानना, स्पिरिट की एक्चुअलिटी, सेल्फ की एक्चुअलिटी, स्व के बारे में जानना, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। तो देखो आज हम लोग कितनी सारी नॉलेज लेते हैं, अभी हमारा एक यान अभी मून में लैंड होने वाला है, मून में क्या हो रहा है, मार्स में क्या हो रहा है, समुद्र के अंदर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो सब नॉलेज रख रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता, सेल्फ को नहीं जानता। तो कम से कम इतना तो हमें होना चाहिए कि अपने बारे में सही नॉलेज होनी चाहिए, सेल्फ के बारे में सही नॉलेज, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, और आध्यात्मिकता इसी के ऊपर बेस्ड है। अब मैंने जब शुरू में कहा कि आज हमारे जीवन में चुनौती बढ़ने का एक कारण है कि हमारी मानसिक शक्ति कमजोर हो रही, और ये पिछले 25-30 वर्षों में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हो, हम हर एक व्यक्ति अफेक्टेड है। अब जब मैंने कहा कि हमारी मानसिक शक्ति कमजोर हो रही है, तो कई लोग हो सकता है बोले कि ऐसे कैसे, आज तो लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, पीएचडी कर रहे हैं, डबल पीएचडी कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज से भी सिंपल है और इसमें प्लस और माइनस की बात है। आपको ये चित्र दिख रहा है और ये सिंपल प्लस माइनस करना है, और आपको बताना है ये लास्ट में जो ये क्वेश्चन मार्क लिखा है तो ये क्या आंसर है, और ये इतना सिंपल है कि आपको इसके लिए पेन और पेपर की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो। हाँ, मिनिमम कुछ मैथ्स बचपन में पढ़ा हो, तीसरी क्लास तक अगर किसी ने मैथ्स पढ़ा हो तो वो आराम से इसको सॉल्व कर सकता है। तो सबको चित्र दिख रहा है, तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है, कितना बताओ, 12। ओके, आप कितना बोल रहे हो, 12, कितना, 27, ओके, 19, 19, ओके, 5, अच्छा, 25, कितना, 12, 27, कितना, 6, 17, 72, 72, 22, अच्छा, और 27, 17, अच्छा, आंसर एक होगा या दो आंसर होंगे, कितना, 27, 21, 17, 19, 11, 12, 12, 21, 11, 19, इतना सारा आंसर देने की जरूरत है, मतलब सिंपल है ना वो। कितना, 3, 8, अच्छा 10, कितना, 26, 36, 16, 24, ओके, करेक्ट आंसर देखते हैं। अभी ये लाइन को देखो, है ना, देखो पहला क्वेश्चन, पहली लाइन देखो, पहली लाइन में हम देखते हैं तीन तीन तलवार का तीन सेट है, तो एक तलवार की क्या वैल्यू होगी, तीन तलवार की तीन है तो एक तलवार की कितनी वैल्यू होगी, एक, करेक्ट, तीन तलवार की तीन है तो एक तलवार की एक। तो अगली लाइन में देखो, एक गन की कितनी वैल्यू होगी, एक गन की कितनी वैल्यू होगी, 5, गुड। तो एक गन की 5 है तो ये जो स्कल बनाया हुआ है, एक स्कल की कितनी वैल्यू होगी, एक स्कल की 2, करेक्ट, 2। तो लास्ट में देखो, 2+5 मल्टीप्लाइड बाई 4, और जब प्लस और मल्टीप्लाई होता है तो पहले क्या करना होता है, ओके, 5 × 4 कितना होता है, 20+2 कितना होता है, अच्छा इधर एक भाई ने बताया, आप खड़े हो जाओ, इनके लिए ताली बजाओ। अब ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को इतना चांस दिया, उन्होंने भी पहली बार नहीं बोला, एक दो पहले फर्स्ट में बोला, ओह गुड, वेरी गुड। तो इसमें क्या डिफिकल्ट था, अच्छा वो 4 तलवार है या 3 तलवार है, 4 तलवार है, 3 तलवार थी, वो वापस चित्र दिखाना, कोई डाउट है उसमें, 3 है या 4, तो देखो इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आप लोगों को इतना मौका दिया, और उसमें नीचे एक वार्निंग भी लिखी थी कि भाई इसमें 90% रॉन्ग बोलते हैं, अगर यहाँ 100 है तो कम से कम 10 लोगों को राइट बोलना था, बहुत मुश्किल से एक व्यक्ति ने राइट बोला, और बाकी लोगों को आपने भी बोला, आपने शायद, मैंने जब खत्म कर रहे थे तो लास्ट में आप बता रहे थे, लास्ट में कोई बोल रहा था 22, तो इतने सारे चांस देने के बाद आप लोग ने करेक्ट बोला। तो अभी आप लोग ने सबने गलत क्यों किया, आप लोग, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर यही क्वेश्चन मैंने आज से 30 साल पहले पूछा होता तो आप में से 50% लोग इसको करेक्ट बताते, 50%। 30 साल में क्या फर्क हो गया, किसकी गति में? तो 30 साल में क्या हुआ, 30 साल पहले 50% लोग करेक्ट बताते, आज मुश्किल से एक व्यक्ति बता रहा। तो जब मैंने कहा ना कहीं हमारा माइंड कमजोर हो रहा है, कई लोग मानते नहीं, तो मैंने ये एक्सरसाइज इसलिए की और मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। तो जो सबसे पहला चीज है बीइंग इन प्रेजेंट, उसका रीजन बताऊंगा, मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों क्या है, क्योंकि कोई फैक्टर्स है जो हम हर एक की लाइफ को इफेक्ट किया। सबसे पहला है बीइंग इन प्रेजेंट, हम लोग वर्तमान में नहीं रहते है ना, बहुत या तो हम लोग बहुत समय बहुत चीजों का आगे सोचते हैं या हम लोग पास्ट की चिंता करते हैं। अभी यहां भी क्या था, एक लाइन थी, एक लाइन भी पूरा नहीं देखा, आप दूसरी लाइन देख रहे हो, दूसरी लाइन भी पूरी नहीं देखी, तीसरी लाइन देख रहे हो। जो मन की एकाग्रता बोलते हैं ना, कि जिस समय जो काम है तो मन बुद्धि उसमें लगे, तो हम लोग या तो आगे का या तो पीछे का, बहुत फास्ट माइंड आगे पीछे जाता है, नॉट बीइंग इन प्रेजेंट। दूसरा, बहुत जल्दी माइंड तेज चल रहा है ना, तो बहुत फटाफट हम कोई कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं, अरे ऐसा ही होगा, तीन तीन तलवार है तो लास्ट में क्या होगा, तीन ही तलवार होगी, दिख रहा है साफ की चार तलवार है, प्लस माइनस लास्ट में क्या था, मल्टीप्लाई था, लेकिन क्या समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि माइंड ने पहले ही बोल दिया हाँ हाँ प्लस 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 है तो ये भी प्लस ही होगा, बहुत फास्ट चलता। मैं एक बार एक घर के सामने से जा रहा था, तो घर के मालिक ने अपने बेल के सामने, ये यहां से मेरे को होगा दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं, बट ये फोन ही कर पाऊंगा ना, माउस से ये दिखना चाहिए ना, मतलब माउस दिखेगा, हाँ दिख रहा है, ओके ओके। तो मैं एक घर के सामने से जा रहा था, तो घर के मालिक ने अपने जो बेल है, बेल के नीचे एक छोटा सा ये लगाया हुआ था ना, नोटिस लगाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसका फोटो खींचा, उसमें लिखा था कृपया घंटी मारने के बाद प्रतीक्षा करें, खोलने वाला चल कर आएगा उड़कर नहीं। तो क्यों लिखा था उसने ऐसा, हाँ अच्छा, वो दिख नहीं रहा मुझे, नहीं वापस चला गया वो फिर, क्योंकि वो स्क्रीन के थोड़ा सा बाहर चला गया ना। ओके थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरी इधर ना स्क्रीन के बाहर चल गया था, इससे मेरे को दिखता नहीं पूरा। तो क्यों उसने लगाया, क्योंकि बहुत पेशेंस नहीं आज, आपने देखा कई बार लिफ्ट में लोग एक बटन दबाते हैं, लिफ्ट बंद नहीं हुई, थोड़ा सा भी दो तीन सेकंड लेट हुआ तो पांच बार दबा देंगे, तो बहुत फास्ट एकदम फटाफट फटाफट माइंड बहुत फास्ट चलता है। और कई लोगों ने तीसरे लेवल तक भी पहुंची, लेकिन फिर उन्होंने नॉट सीइंग दी ओवरऑल पिक्चर है ना, जैसे 2+5 = 4, तो पहले क्या कर दिया 2+5 कर दिया, आपके सामने एक समस्या है तो कम से कम उसको टोटैलिटी में देखो, पार्ट में देखेंगे तो आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, उस प्रॉब्लम को टोटैलिटी में देखेंगे तो हम उसको रिजोल्व कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम अभी ये जो चित्र है, क्या दिख रहा है आपको चित्र में, एक जिम दिख रहा है और वो एक उसके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये फोटो एक्चुअल फोटो है, और ये फोटो मतलब फोटोशॉप वाला नहीं है, ये एक मिलिट्री स्टेशन है, कोस्ट गार्ड का कोई इधर कोस्ट गार्ड के कोई है, कोस्ट गार्ड हाँ, तो कोस्ट गार्ड स्टेशन का है ना। तो अभी हम लोग सब जिम में जाते हैं, जिम में क्यों जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, और स्ट्रेस होता तो स्ट्रेस कहां होता है, माइंड में होता। तो प्रॉब्लम कहां है और सॉल्यूशन कहां ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम कहां है, माइंड में, और हम लोग सॉल्यूशन कहां ढूंढ रहे हैं, मिलेगा सॉल्यूशन आपको, वो पता है वो एक बूढ़ी औरत की कहानी है कि वो चाबी ढूंढ रही होती, तो उसको नहीं मिलता तो अड़ोसी पड़ोसी भी लग जाते, सब लोग मिलकर ढूंढ रहे, मिल काफी देर होते नहीं मिलते, तो बोलते माता जी आप ठीक से याद करो चाबी कहाँ गिरी कैसे गिरी, तो बड़े आराम से बोलती है वो मेरा घर दिख रहा है, हाँ वो दरवाजा दिख रहा है, हाँ उसके उधर चाबी गिर गई, बोला अच्छा वहां गिर गई आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे, बोला वहां अंधेरा है यहाँ लाइट है। अब वो चाहे वो ढूंढे, उसके साथी ढूंढे और कितना भी देर ढूंढे, चाबी मिलेगी? प्रॉब्लम कहीं है और उसका समाधान कहीं और ढूंढ रहे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम माइंड का है और काम हम कहां कर रहे हैं, बॉडी पर। तो फिर हम सही सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आज जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है वो है माइंड की, और ये माइंड की शक्ति कमजोर हो गई। भाई ने पूछा था कि कैसे आप बोल सकते हो कि 30 वर्ष पहले चीजें डिफरेंट थी, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में जो एक दो चीजों का आविष्कार हुआ और वो हमारी लाइफ से, हर एक की लाइफ से इस तरह से जुड़ गया कि हम उससे इनसेपरेबल हो गए, उसमें से पहली चीज थी मोबाइल, है ना। ये मैं समझता पिछले 15 वर्षों में बहुत इसका हुआ। यहां कोई है जो मोबाइल यूज ही नहीं करता, ऐसा कोई है? अच्छा, छोटू ने हाथ खड़ा कर दिया, वो तो पास हो गया, वो भी खुशी अभी तक तो कोई तो है हाथ खड़ा करने वाला, थोड़ा सा टाइम के बाद तो शायद वो भी मुश्किल मिलेगा। तो अभी मोबाइल हम सबकी लाइफ के साथ जुड़ गया। हम थोड़े दिन पहले एक बार DGBSF के पास गए थे, तो DGBSF के सुना रहे थे, बोला पहले क्या होता था बॉर्डर पे, कभी अगर प्रॉब्लम होती थी तो समझो घर में बच्चे को बुखार हो गया तो माँ ठीक करेगी, अड़ोसी पड़ोसी का मदद लेगी, ज्यादा से ज्यादा एक चिट्ठी लिख देगी, और चिट्ठी बॉर्डर पर कब पहुंचती थी, 2 हफ्ता 3 हफ्ता, जैसे कितना रिमोट एरिया का पहुंची। अच्छा, जब चिट्ठी मिली, अगर कोई फील्ड फॉर्मेशन से कहीं से उसने कुछ STD किया और फोन किया तो क्या होगा, 3 हफ्ते के बाद जब वो फोन कर रहा तो क्या होगा, तब तक छोटू तो ठीक हो गया। तो लेकिन आज छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत वो बॉर्डर पर है, उसको सारा मैसेज, आजकल तो ऑडियो वीडियो 2G 3G 4G सब सारी चीजें उधर मिल जाती। तो अभी अगर उधर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चा बुखार है बच्चे को, अब वो क्या करेगा? अब एक छोटी सी चीज के लिए वो छुट्टी तो नहीं ले सकता ना, लेकिन अगर मुझे पता चले मेरा बच्चा बीमार है तो स्ट्रेस तो होगा ना। तो आज कितनी ही ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही। और दूसरा जो है वो है मीडिया। 30 वर्ष पहले 90 से पहले हमारे पास जो दूरदर्शन होता था, टीवी मतलब कितने चैनल, एक दूरदर्शन और वो चार में वो DD मेट्रो को जाता था। आज कितने चैनल है? अनगिनत, मतलब आप समझ लो 4 डिजिट क्रॉस कर गया। कई लोग अपने रिमोट इसलिए बदलते कि उसमें मैक्सिमम 3 डिजिट, तो कहां वो एक चैनल, कहां इतने चैनल। अभी ये दोनों चीजों का क्या हुआ, ये हम हर एक लाइफ से जुड़ा हुआ, ये कंटिन्यूस हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कंटिन्यूस। मैं बैठा हूं मोबाइल देख रहा हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही, कहीं जा रहा हूं इतना सारे चैनल है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। माइंड की ये विशेषता है कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूं तो उसके ऊपर सोचेगा जरूर। मैंने आपको सिंपल सी चीज बोली, आज बिहार में एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होगा आप सोचेंगे ना, बिहार में कहां हुआ होगा, क्या एक्सीडेंट हुआ होगा, कितने ज्यादा दुर्घटना, तो ज्यादा लोग मर तो नहीं गए, घायल तो नहीं हो गए, हमारे तो कोई जान पहचान वाले, मतलब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर माइंड चलेगा, और थोड़ी टाइम के बाद कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो माइंड कंटिन्यूस चल रहा है। जैसे एक शांत पानी है, उसके अंदर आपने कंकड़ डाला तो क्या हो गया, अब वो इससे पहले शांत हो, आपने दूसरा डाला, तीसरा डाला, तो कंटिन्यूस उसमें टर्बुलेंस। तो इसी तरह माइंड में कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और कंटिन्यूस माइंड न चाहते हुए भी, क्योंकि मोबाइल तो आज हमारे हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ है, तो कंटिन्यूस वो माइंड हमारा बिजी है। और माइंड की शक्ति क्या है, थॉट्स की शक्ति है। जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ज्यादा आप कमजोर होंगे। तो एक शक्तिशाली व्यक्ति थोड़े थॉट्स सोचता है, और एक जो टेंशन वाला है, स्ट्रेस वाला है, वो बहुत सोचेगा, बहुत फास्ट सोचेगा। तो एक बैटरी होती है, वो फटाफट डिस्चार्ज होती है। और आज हम न चाहते हुए भी, 30 वर्ष पहले ये नहीं था, तो टुडे हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते ना। मोबाइल आज मैंने कहा मोबाइल इतना प्रॉब्लम का सोर्स बन गया, फिर भी अगर मैं यहां कहूंगा, जैसे भारत में कहावत होती है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें से कौन कौन छोड़ेंगे मोबाइल, हाथ खड़ा करें, छोड़ेंगे, छोड़ सकते नहीं है, छोड़ेंगे नहीं छोड़े, कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, छोड़ेंगे कौन, कोई नहीं छोड़ेगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आज हम लोग ना चाहते हुए भी हमारे साथ ये रहेगा, तो उसके जो नेगेटिव प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, कहीं ना कहीं हमें कॉन्शियसली मेहनत करनी पड़ेगी, फिल्टर लगाना पड़ेगा कि जो अनवांटेड चीज है उससे अपने आप को सेव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश नहीं करेंगे तो माइंड ऑटोमेटिकली डिप्लीट, जो कमजोर होता है, बैटरी कमजोर होगी। और चुनौती क्या है, मैंने कहा ना वही चीज, एक छोटी सी टेबल है, एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए वो चुनौती नहीं है, एक कमजोर व्यक्ति के लिए वो एक चैलेंज है। तो आज लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ टाइम पहले चैलेंज नहीं था, लेकिन आज चैलेंज बन गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वही नहीं हुआ, आज सचमुच में चैलेंजेस भी और आ गए, तो दोनों इफेक्ट हो गया, ये कमजोर भी हो गए और चैलेंजेस भी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हमको मन को शक्तिशाली बनना है, और ये जो कुछ सोशल चेंजेस है जिसमें हम सबकी लाइफ जुड़ी हुई है, उसके कारण हमारी मन कमजोर हो रहा है। तो हमको कॉन्शियसली माइंड को शक्तिशाली बनाने का एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो रहे तो कॉन्शियसली आप करते हो ना, आज ऐसा ऐसा खाना मुझे भी खाना ही है। जिसको डायबिटीज है वो कॉन्शियसली शुगर को अवॉइड करेगा, वैसे ही मेरा माइंड कमजोर हो रहा है, मुझे कॉन्शियसली माइंड को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करना ही। आज ऐसा नहीं बोल सकते, जैसे कई लोग सोचते हैं ना ये आध्यात्मिकता या मेडिटेशन एक लग्जरी चीज है, मतलब जो रिटायर हो जाएगा फुर्सत में वो करेगा, नहीं। आज जो व्यक्ति ज्यादा बिजी है, जितनी ज्यादा जिम्मेवारी है उतनी ज्यादा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ज्यादा इसकी जरूरत है। माइंड कमजोर हुआ तो सब कुछ, आजकल बहुत सारी बीमारियां जो है डॉक्टर्स भी कहते हैं उसका सोर्स माइंड में, डिसीज से पहले डिस ईज इन माइंड। डिस ईज मतलब माइंड ईज में नहीं है, माइंड हलचल में, माइंड अशांत है, उसका प्रभाव फिर शरीर के ऊपर होता है। साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते 80% से ज्यादा बीमारियां उसका रूट कॉज माइंड में। अभी आपको जो चित्र दिख रहा है, ये दो चित्र है या एक चित्र है, दो चित्र है या एक चित्र है, किसको दो दिख रहा है? ओके, किसको एक चित्र दिख रहा? हाँ अच्छा ठीक है, इसमें कितने ब्लैक डॉट है दिख रहा है, कितने ब्लैक डॉट है, कितने ब्लैक डॉट, ध्यान से देखो, काउंट करो कितने ब्लैक डॉट है, कितने है? ओके, जंगल दिख रहा है, टाइगर दिख रहा है, फाइंड द हिडन टाइगर, कहां दिख रहा है, पेड़ के ऊपर। अच्छा, जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़ गया, साइड में, हाँ छुप गया, नहीं वही ढूंढना है। किसी को दिखा, हिडन हो गया, नहीं उसको ढूंढना है। तो देखो मैं आप अगले चित्र में दिखाता हूं, ध्यान से देखना, शेर के ऊपर लिखा हुआ है द हिडन टाइगर, दिख रहा है, उसके स्ट्राइप्स को ध्यान से देखो, द हिडन टाइगर लिखा हुआ है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, इसके कितने पाव हैं? कितने पाव हैं? छह है, पांच है, चार ही। अच्छा मैंने ये चित्र आपको क्यों दिखाए, क्योंकि देखो सेम चित्र में अलग अलग लोग ने अलग अलग आंसर दिया। तो हमको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमारे पांच कर्म इंद्रियों से मिलता है, फिर हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है और उसके आधार पर हम कुछ एक्शन लेते हैं। अभी पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है पांच कर्म इंद्रियों से ये सही है ना। आज सेम चित्र पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दिया। जैसे पुराने जमाने में सब लोग सोचते थे पृथ्वी फ्लैट है, और अगर आप जाते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम आप जाके गिर जाओगे। या 400 साल पहले तक सभी लोग सोचते थे कि रोज सूरज इधर से निकलता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है और दूसरी तरफ जाता है, मतलब हर दिन सन पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 400 साल पहले तक सभी लोग समझते, तो पहली बार उस समय एक एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि ये गलत है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रही, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही। तो तब वो उस समय चर्च बड़े पावरफुल होते थे, तो चर्च बड़े नाराज हो गए, ये कौन अपना ही बता रहा, तो उसको फांसी चढ़ाने वाले थे, फिर उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। आज क्या समझते हैं, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो क्योंकि आंखों की लिमिटेशन है, जितना हमको दिख रहा था हम उतना समझ रहे थे। तो पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, कई बार होता है हमको जो दिख रहा है हम फटाफट एज्यूम कर लेते, कुछ चीज सुना हमने पूरा नहीं सुना, तो जो इन्फॉर्मेशन मिली वो पूरी नहीं मिली। दूसरा, माइंड फास्ट चल रहा, फटाफट कंक्लूजन में जंप कर दिया ना, फटाफट हमने अपना ये निष्कर्ष बना दिया। तो जब एक इन्फॉर्मेशन की डाउट है, दूसरा माइंड भी ऐसे फास्ट चल रहा है, तो नेचुरली आप जो चीज करोगे वो सही करोगे गलत करोगे। तो कई बार हम लोग गलत कर देते हैं। कुछ समय पहले मैं दिल्ली में हरिनगर के उधर था, तो रक्षाबंधन के समय हमारी बहने राखी बांधने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कई जगह जाती है, तो जेल में भी जाती है। तो उस दिन संडे का दिन था, तो मैं भी चल पड़ा, तो तिहार जेल वहां राखी का प्रोग्राम था। तो बहुत उधर तो बहुत सारे कैदी हैं, वो भी एक जेल का कुछ पोर्शन में ही करना था, तो भी बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने एक यंग सा कैदी था, बड़ा उमंग से सब हेल्प कर रहा था और कार्य, तो मैंने उसको बुलाकर पूछा, भाई क्या हो गया, तू इधर क्यों है? तो उसने बोला कि मैं मुझे उमर कैद की सजा हुई। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया, उमर कैद क्यों हुई? तो बोला मैं और मेरा भाई, हम लोग दो भाई थे, पिताजी के दो लड़के थे, तो कुछ बात में थोड़ा सा कुछ हमारा झगड़ा हो गया, तो बोलने में थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई और मैंने एक चाकू लिया और उसको मार दिया, उसकी डेथ हो गई और मुझे जज ने उम्र कैद की सजा दे दी। फिर उसने एक और चीज बताई, उसने बोला कि बात भी छोटी सी थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन आया और उसने तुरंत रिएक्ट कर दिया। अगर उसके पास एक बटन होता, कौन सा बटन, पॉज का बटन। पॉज क्या करता है, थोड़ी देर स्टॉप कर, चलो कुछ भी बोला हो, थोड़ा सा रुक कर सोच कर फिर करता, तो करता हुआ ऐसा, खुद ही बोल रहा है ना कि बात भी छोटी सी। तो कई बार हमारी लाइफ में भी बहुत बार, क्योंकि मैंने कहा ना जो माइंड भी फटाफट फास्ट चलता है, इन्फॉर्मेशन भी पक्की नहीं है, हम लोग तुरंत रिएक्ट कर देते। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है रिएक्ट करना और एक होता है रेस्पॉन्ड करना, दोनों में फर्क है। रेस्पॉन्ड होता है पॉज का बटन यूज करके। अभी अनफॉर्चुनेटली पॉज का बटन कई बार हमारी जीवन में है नहीं। पॉज का बटन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारे केरला के साथी कहां है भाई, केरला वाले, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा हिंदी समझने में कम होता है। ओके, तो पॉज का बटन, अभी हमारे जीवन में पॉज का बटन होना चाहिए, तो कैसे आएगा पॉज का बटन, कैसे आएगा पॉज का बटन, कैसे लाएं हमारे जीवन में पॉज का बटन, हाँ, पावरफुल माइंड। तो पॉज का बटन के लिए हम लोग कहते हैं मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर मुझे अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पर कंट्रोल करना आता। तो ये मेरे लिए पॉज का बटन है, कोई भी बात हो तो मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा उसको पॉज करके सोच कर फिर करूंगा, फिर मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। नहीं तो कई बार होता है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ छोटी सी बात होगी तुरंत मैंने कुछ बोल दिया और फिर देखते हैं कि इतने वर्षों से हम लोग अच्छे दोस्त हैं, तो बात तो वो जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं एक खटास आ जाती है, एक दूरी आ जाती है और फिर उसको वापस कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें हाथ खड़ा करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अलग अलग कलर्स में है, तो आपको इसमें मिस्टेक बतानी है, लेकिन इसमें हाथ खड़ा करना और मैं उसी से पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अलग अलग कलर्स में है, आपको बताना है इसमें मिस्टेक क्या है। आपको हाथ खड़ा करना बस, है ना, बोलना नहीं। अच्छा, एक वो उन्होंने हाथ खड़ा करो, फिर मैं पूछूंगा, जिससे भी पूछना होगा ना मैं पूछूंगा। अच्छा, आप भी है, ओके, बंद हो गया, वो थोड़ी देर वो दिखा ना, है ना, चित्र थोड़ी देर दिखाओ, है ना। अच्छा, आप भी बताएंगे। अच्छा, कुछ 8-10 लोगों ने बता दिया। अच्छा ठीक है, आप बताइए। ओके, इधर आपने बताया ना, क्या आंसर था, क्या मिस्टेक थी, मिस्टेक लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, मिस्टेक नहीं, वो ठीक है, नहीं उन्होंने भी ऐसे होशियार बताया। हाँ, अच्छा इसमें मिस्टेक क्या है पता है, कैन यू फाइंड द, दो बार द की जरूरत थी, तो इसमें मैंने क्यों बोला हाथ खड़ा करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि नहीं तो इसमें एक आंसर बोलता है तो फटाक से सबका ध्यान उधर चले जाता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और टाइम देता और जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उनसे मैं पूछता, और हमको बहुत सारे आंसर मिलते, सर उसमें जीरो नहीं था, सर थ्री थोड़ा टेढ़ा था, सर सिक्स का कलर थोड़ा सा ऐसे था, सर वो ग्रीन ग्रीन दो बार आ रहा था, मतलब ऐसे ऐसे आंसर होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे आंसर, सर ये गलती ये गलती ये गलती। लेकिन गलती क्या थी? गलती क्वेश्चन में ही थी। हम लोग ये क्यों आपको ये बताते हैं, बहुत बार गलती हमारे में होती है और हम गलती कहां ढूंढ रहे होते हैं, उसमें है व्यक्ति में है, सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में, उसको। अब वो कितना भी ढूंढ रहे हैं मिलेगी गलती, गलती कहां है? तो हमारे इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, बोलते हैं कि हमको जो भी एफर्ट डालना है वो अपने ऊपर डालना है। और यहां एक बहुत अच्छा स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मतलब ये व्यक्ति अगर सेल्फ चेंज होगा तो आप पूरे वर्ल्ड को भी चेंज कर सकते हो। बाकी मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो मैं उसको बदल दूं, मैं बॉस को बदल दूं, मैं इसको बदल दूं, वाइफ को बदल दूं, बच्चे को बदल दूं। आजकल बच्चा भी उसके एक संस्कार है तो संस्कार है, आप फोर्स से नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, वो आपके हाथ में। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हम अपने ऊपर काम करें, दूसरे के ऊपर काम करने से आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बट अपने आप के ऊपर काम करेंगे तो आप देखेंगे बड़े आराम से आप कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आराम से नेविगेट कर सकते हो। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, ये नहीं, ओके, ये भी एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आप देख रहे हो एक व्यक्ति है, वो एक गेंद फेंक रहा है, गेंद दीवार से टकरा रही है और वापस आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि गेंद फेंके, सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, फिर भी बॉल वापस आ जाए? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे रस्सी बांधी हुई है तो बॉल फेंके और रस्सी आ गई, वापस आ गई, है ना, या उधर कोई खड़ा है और उसने वापस पकड़ा के दे दी। गेंद फेंकी, सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, फिर भी गेंद वापस आ जाए। गेंद फेंकी, गेंद के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, फिर भी गेंद वापस आ जाए, एक केस में। अगर मैंने गेंद को ऐसे फेंकी तो क्या होगा? आएगी ना, क्यों आएगी? ग्रेविटेशन। आप में से किसी ने ग्रेविटेशन को देखा है किसी ने? अच्छा, आप में से कोई है जो कि ग्रेविटेशन को मानता नहीं है कि भाई मैंने देखा नहीं है तो मैं है? ऐसा कोई? सब मानते हैं ना ग्रेविटी तो है, मतलब अगर आपने फेंका तो वापस आएगी, आपने जोर से फेंका तो जोर से आएगी। दिख नहीं रहा, दिख तो नहीं रही, ग्रेविटी दिख रही है? तो इसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द बोलते हैं। क्या शब्द है उसको? आध्यात्मिकता में इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म वो चीज है जो आप करते हो और वो उसका रिजल्ट आपको मिलता है, दिखेगा नहीं कि कैसे मिल रहा है, लेकिन 100%। कोई है इधर सोचता है कि शायद ये गलत भी हो, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं ना दुनिया में, कुछ लोग तो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके जीवन में मुसीबत ही आ रही है, और कई लोग उल्टे काम कर रहे हैं और मजे कर रहे हैं, तो अच्छा का रिजल्ट अच्छा तो मिल नहीं रहा। तो कर्म का लॉ बहुत क्लियर है और बहुत एक्यूरेट है, वो है कि जो मैं करूंगा मुझे 100% मिलेगा। एक ही इसमें जो प्रॉब्लम हो जाती है वो ये है कि कई बार वो तुरंत नहीं मिलता, जैसे कोई बीज है, कर्म एक बीज है, तो बीज डाला तो बीज में आप देखेंगे कुछ फल फटाफट निकल जाते हैं, कुछ फलों को टाइम लगता है, तो टाइम का फैक्टर होता है। अब टाइम का फैक्टर होने के कारण आज मैंने आपसे 100 रुपया लिया, मैंने आपको दिया नहीं, उसके बाद मैं भूल गया, 5 साल के बाद कोई कारण से आपने मेरे से वो 100 रुपया ले लिया, चाहे वो अपने छीन कर ही ले लिया, मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? देखो मेरे से 100 रुपया छीन कर ले लिया, देखो कितना ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन मेरे को क्या मैं भूल गया था कि 5 साल पहले मैंने 100 रुपया लिया था। तो कर्म में जो कर्म मैं करूंगा मेरे को रिटर्न 100% मिलना है। बस ये है कि कुछ चीजें तुरंत मिलती है, कुछ चीजें थोड़े टाइम के बाद मिलती है। तो अगर मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो मैं दो शब्दों को जीवन से निकाल सकता हूं। कौन से दो शब्द? गुड लक एंड बैड लक। ये दोनों शब्द एक्चुअली होते ही नहीं। अगर कभी मैंने कहा गुड लक, यानी ये मेरे ही कोई पास्ट के कर्म है जिसका मेरे को अभी परिणाम मिला, और अगर मैंने कहा बैड लक तो वो भी क्या है? कोई ना कोई पास्ट के एक्शन है जिसने कैचअप कर लिया, आज मुझे पता नहीं कि क्यों हो रहा। तो गुड लक और बैड लक कोई शब्द नहीं। तो अगर इसको हम एक लाइन में करें कन्वर्ट की, वॉट एवर आई गेट इन लाइफ आई गेट बिकॉज ऑफ माई ओन एक्शन। मुझे जीवन में जो कुछ मिलता है मेरे कर्मों के कारण मिलता है। अब ये एक स्टेटमेंट इतना पावरफुल है, अब मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता। कई बार हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, ऐसी चीजें हुई, ये सर्कमस्टेंस था, मेरा जन्म ही यहाँ हुआ, मेरे भाई बहन ही ऐसे हैं, मेरे को ऐसा एनवायरमेंट मिला, ये कोई ब्लेम नहीं कर सकता, सब मेरे कर्मों के हिसाब से। दूसरी चीज ये सबसे ज्यादा इंफेसिस करता है कि हमारे कर्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमें कर्म कैसे करने चाहिए? अच्छे करने चाहिए, क्योंकि वो वापस सबको ही मिलेगा। जैसे आजकल गिफ्ट का रिवाज है ना, कई जगह आप जाते हो, आप एक गिफ्ट देते हो, और कई बार ये गिफ्ट इतना होता है कि आपने दूसरे को दिया, दूसरा वही गिफ्ट तीसरे को देता, तीसरा वही गिफ्ट चौथे को देता, और चौथा हो सकता है वो गिफ्ट आपको, अगर आपको पता चले कि ये चक्कर के बाद वो गिफ्ट मेरे पास ही आने वाला है, तो आप कैसा गिफ्ट देंगे? अच्छा ही गिफ्ट देंगे ना, क्योंकि घूम फिर के वो आपके पास ही आने वाला, तो आप कोशिश करोगे अच्छे से अच्छा। तो वैसे ही हम अच्छे से अच्छा कर्म करें, चाहे वो मेरे वर्क फील्ड में हो, चाहे मेरे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से अच्छा कर्म हर समय करूं। अब ये बात तो मेजोरिटी मानते हैं, अच्छा कर्म करना चाहिए, बट आध्यात्मिकता बताती है कि अच्छा कर्म किसको कहते हैं। कई लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की क्या जरूरत है, आध्यात्मिकता बताती है अच्छा कर्म किसको कहते हैं। मैं इंडियन नेवी में हूं और मैं शिप्स में हूं, मैं इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हूं, तो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर में हमारे इंडियन नेवी में जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स कंप्यूटर्स ये सब संभालते हैं, तो जब मैं शिप में था तो मैं वेपन्स और जो मिसाइल सिस्टम है वो संभालता था। अगर समझो कल को उस समय पाकिस्तान के साथ कुछ युद्ध हुआ और हमारा शिप गया और हमने एक युद्ध हुआ तो एक दूसरे को हम लड़ेंगे, हमने एक बटन दबाया, एक मिसाइल गई और दूसरे शिप में टकराई, दूसरा शिप के ऊपर हिट कर गया, उसके अंदर 300 लोग थे, 300 लोगों की डेथ हो गई। तो कई लोग मेरे को पूछते हैं आप तो आध्यात्मिकता पे जाते हो, उधर शांति सिखाते हैं सब लोगों को, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, तो आप तो ये काम कर रहे हो, आप उधर बटन दबाओगे और वो मिसाइल जाएगी, 300 लोग मर जाएंगे, 300 लोग के परिवार को दुख होगा, तो आप अच्छा कर्म कर रहे हो या खराब कर्म कर रहे हो, क्या बोलेंगे? अच्छा कर्म कर रहे हैं खराब कर्म कर, हाँ ड्यूटी है, अच्छा कर्म है। मैंने कहा ना कर्म अच्छा करना है, लेकिन अच्छे कर्म की डेफिनेशन होनी चाहिए ना। ऑन द फेस वैल्यू इट मे लुक लाइक एन एक्शन विच हैज रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 300 पीपल एंड 300 फैमिलीज आर गोइंग टू सफर। तो ये अच्छा कर्म हो सकता? तो आध्यात्मिकता जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा कर्म क्या है और अच्छा कर्म क्या नहीं है वो जजमेंट का हमको एक डिसीजन देती है, मतलब डिसीजन लेने के लिए वो बुद्धि देती है कि एक्शन राइट है या रॉन्ग। अब मैं आपको बताता हूं ये एक्शन राइट है, और वही अगर समझो एक छोटा बच्चा इधर थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, चंचलता दिखा रहा है, और मैंने उसको ऐसे थप्पड़ मार दिया, ये एक्शन रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट एक्शन क्या होता है स्पिरिचुअलिटी बहुत क्लियरली डिफाइन करती है कि हम कोई कमियों के कारण, कमियों के इन्फ्लुएंस में, जिसको हम कहते हैं कोई विकारों के वशीभूत अगर हम कोई कर्म करते हैं, जब बोलते हैं ना पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसके वशीभूत होकर मैंने अगर कोई एक्शन किया तो वो रॉन्ग एक्शन हो गया। अपने इधर थप्पड़ मारा तो कहीं ना कहीं गुस्सा था, गुस्सा भी क्रोध का अंश है, तो वो रॉन्ग हो गया। लेकिन जब मैंने वो मिसाइल का बटन दबाया तो अगर आप चेक करेंगे पांच विकारों में कोई विकार नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। और तब रॉन्ग एक्शन क्या होगा कि अगर वो मिसाइल शिप को नहीं लगी, रॉन्ग एक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी और मैं अपनी ड्यूटी में फेल हो गया। तो ये तो मैंने एक लड़ाई का एग्जांपल दिया। हमारे जीवन में बहुत सारे संबंधों के साथ एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे का व्यवहार कर रहे हैं, हर जगह हम लोगों को एक कंपस है डिसीशन लेने के लिए, एक सही निर्णय की सही एक्शन क्या है और गलत एक्शन क्या। स्पिरिचुअलिटी हमको वो निर्णय शक्ति देती है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म क्या होता है वही नहीं समझ में आता, इसलिए आध्यात्मिकता जरूर। तो अब अगर मेरे को पता ही नहीं है अच्छा कर्म क्या है तो मैं कई बार ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो कि मैं सोचता हूँ कि सही है लेकिन वो सही नहीं होगा। उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एक तराजू है। तराजू क्या होता है कुछ चीजों को मेजर करने के लिए। अगर मैंने तराजू में, मैं एक दुकान में गया, दुकानदार ने, मैंने बोला 5 केजी सब्जी चाहिए, उसने 5 केजी इधर रखी, 5 केजी सब्जी ली, मेरे सामने नापा, बिल्कुल कांटा एकदम सीधा, मैंने 5 केजी लिया, घर गया, घर में जाके मैंने उसको मेजर किया, 5 केजी नहीं था, 5 केजी से कम था। हो सकता? कैसे हो सकता, कैसे हो सकता? क्योंकि मेरे सामने उसने मेजर करके दिखाया ना, चुंबक लगाया। हाँ, कई बार वो थोड़ा सा वो आजकल करते हैं, थोड़ा सा चुंबक लगा दिया और ये, तो मेरे माइंड में भी आया चुंबक लगाया होगा, वापस गया दुकानदार का, मैंने बोला ये आप लोग चीटिंग कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, आप ग्राहक को आप बेवकूफ बना रहे हो, आप 5 केजी बोलते हो, 5 केजी सब्जी नहीं है, कम है। तो दुकानदार मेरे से भी ज्यादा गुस्से हो गए, बोला साहब हम लोग गरीब हैं लेकिन मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, हम किसी को धोखा देने के लिए नहीं करते, ईमानदारी से अपनी कमाई करते। अब ऐसा हो सकता? हाँ, हमारे तराजू में गड़बड़ी। और वो सच भी बोल रहा था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था आपको गलत, आपको धोखा देने का। लेकिन क्या होता है, हो सकता है कि वो तराजू भी कहीं से लेकर आया ना, खरीदा, कहीं उन्हें बताया भी, हो सकता है ओरिजिनली वो गलत हो, उसका कैलिब्रेशन जैसे किसी का गलत होगा, होता है ना, तराजू को भी कहीं कैलिब्रेट किया होता। अगर तराजू में ओरिजिनली कुछ गड़बड़ी है तो क्या होगा, कभी भी वो 5 केजी डालें इधर 5 केजी कभी भी सही होगा, क्योंकि ओरिजिनली वो गलत है। ओरिजिनली गलत है नहीं, जब कुछ नहीं होता दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे होता, तो जब आप दोनों को सेम करोगे तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा, उल्टा वो हर समय ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ओरिजिनल गलती थी, तराजू में ओरिजिनल इनबिल्ट गलती थी। लेकिन वो दुकानदार को मालूम था, वो दुकानदार को नहीं मालूम था। तो दुकानदार कितने कॉन्फिडेंटली हर समय वो 5 केजी बेच रहा है, और कोई पूछता तो नाराजगी में भी कोई कम नहीं है, साहब आप ऐसे कैसे बोलते हो, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उससे गलत एक्शन हो रहा है, हर समय वो चीट तो हो रही है ना, 5 केजी की वजह 5 केजी तो नहीं दे रहा ना, क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं। तो ऐसे ही हम लोग स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं हमारे यहाँ गलत एक्शन कैसे होता है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी है। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, और आध्यात्मिकता का फर्स्ट लेसन है कि शरीर और शरीर में रहने वाली चेतन शक्ति, सोल, आत्मा, अब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूलकर अपने आप को सिर्फ बॉडी समझ रहा हूं, और बॉडी कॉन्शियसनेस में अपने आप को बॉडी समझ के सारे एक्शंस कर रहा हूं, ये ओरिजिनल तराजू की गलती है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं सोल हूं और मैं अपने आप को बॉडी समझ के कर रहा हूं, तो कई बार मैं ऐसे एक्शंस करता हूं, और जब कोई कुछ बोलता है ना शायद आप ये गलत कर रहे हो, तो मैं जस्टिफाई भी करूंगा, मैं नहीं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मेरी ओरिजिनल गलती क्या कर रहा हूं। ओरिजिनली मेरा आइडेंटिटी है, मैं एक सोल हूं, एक स्पिरिट हूं, एक आत्मा हूं, एक लाइट हूं, एक शक्ति हूं, और मैं शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं, बट वो आइडेंटिटी को छोड़कर मैं बॉडी की आइडेंटिटी कर रहा हूं, ले रहा हूं, जो कि एक गलत आइडेंटिटी है ना। तो इसीलिए बहुत एक्शन हम लोग सोचते हैं, आज भी हम लोग जब बोलते हैं ना आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन, जनरली आंसर ये होता है कि देखो हम ये सब तो नहीं करते, लेकिन हम जीवन में ना हर समय सही करते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, 2-3 चीजें वो जरूर बोलता है। लेकिन आध्यात्मिकता बताती है कि बहुत बार हम लोग ऐसी भी कई चीजें कर रहे हैं। मैं आप सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक भिखारी आया, उसने मेरे को बोला कि पैसा चाहिए, मैंने उसको 10 रुपया दिया, वो 10 रुपये से जाकर उसने एक सिगरेट खरीदी और सिगरेट पिया, मेरा एक्शन सही हुआ गलत हुआ? सही हुआ गलत हुआ? तो कई चीजें बहुत ऐसे दिखने में, कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, बहुत एक्शन, बहुत सारे परम्यूटेशन कम्बिनेशन है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये आध्यात्मिकता हर समय हमको बताती है कि किस समय क्या एक्शन सही है और किस तरह से हमको करना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि हमको आध्यात्मिकता समझे। मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन से समाप्त करता हूँ क्योंकि इसके बाद है ना बहन आई ना। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा है? पहले मुर्गी आई या पहले अंडा है? क्या है? अंडा है। अच्छा, अंडा कहाँ से है? पहले मुर्गी आई। मुर्गी कहाँ से आई? हाँ, इवोल्यूशन। लेकिन कुछ तो पहले आया होगा ना। तो कुछ समय पहले एक बीएसएफ का प्रोग्राम था, तो ऐसे पूछा तो एक बीएसएफ का जवान खड़ा हुआ, बोला सर मैं बताऊंगा। मैं सोचा बड़ा कॉन्फिडेंटली, आज तक किसी ने नहीं बताया। बोला सर मुर्गी और अंडा दोनों होटल से आते। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछा, पहले मुर्गी है या पहले अंडा है? क्योंकि बहुत बार हम जीवन में ना ऐसा सोचते हैं कि जीवन में स्ट्रेस या थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन डिप्रेशन या ऐसी चीजें तो हमारी लाइफ में है नहीं। तो आज की लाइफ में थोड़ी मुश्किलें हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ी परेशानी है, तो मेरे को इसके लिए शायद कोई मेडिटेशन सीखना हो या कोई थोड़ा मैं स्पिरिचुअल नॉलेज समझूं या कुछ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अपनाऊं, इसकी मेरे को जीवन में आज जरूरत नहीं है। जब मेरे को प्रॉब्लम होगी तब मैं जरूर आध्यात्मिकता में भी आऊंगा, मेडिटेशन भी करूंगा, जरूर करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम इधर एक ही है, ये प्रॉब्लम माइंड के लेवल की है। जब व्यक्ति स्ट्रेस में आता है, बहुत स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन में चले जाता है, तो सबसे पहली शक्ति जो उसकी फेल होती है, कोलैप्स होती है, वो है उसके माइंड के सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब वो डिप्रेशन में चला गया, माइंड उसका पूरा खत्म, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना मतलब उस समय माइंड सोचना बंद। जब उसका माइंड बिल्कुल ही नॉन ऑप्स हो गया, सोचने की शक्ति खत्म, उस समय अगर मैं उसको कुछ समझाऊं तो समझेगा वो? जैसे एक व्यक्ति बहुत दारू पीता, आपको कहा गया है कि उसको जाके समझाओ वो बहुत दारू पी रहा है, उसके कारण उसका हेल्थ का भी नुकसान है, पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है, घर में भी बहुत झगड़े हो रहे हैं। आपके पास चॉइस है, उसको जाके समझाना है दो टाइम, एक जब उसने कोई दारू नहीं पी और दूसरा जब वो पूरा दारू पी के बैठा हुआ। कब समझाएंगे आप? कब समझाएं? जब उसने दारू, जब उसने दारू पी है तो वो आपको समझाने लग जाएगा। तो जब उसने नहीं पी है उस समय अगर आप समझाएंगे तो शायद वो समझ जाए। तो ऐसे ही आज जब मैं ठीक हूं, आज मैं फिट हूं, आज मैं समझदार हूं, आज मैं ऐसे जीवन में कुछ चीजें अपनाऊं जिससे कि मैं इस रास्ते पे कभी जाऊं ही नहीं, स्ट्रेस या डिप्रेशन या सीवियर डिप्रेशन। क्योंकि एक बार मैं इस रास्ते पे चला गया फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि माइंड की शक्ति चला गई। जैसे एक किसी व्यक्ति को खींचना रस्सी से, रस्सी टूट गई फिर मैं कैसे खींचूंगा? खींच सकता हूं? तो माइंड की शक्ति कोलैप्स हो गई, तो यहां कोई भी आए कितना भी अच्छा भाषण करे, कितनी भी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करे, उसका माइंड तो काम ही नहीं कर रहा है ना। तो इस रास्ते पर प्रिवेंशन इज दी ओनली क्योर। एक बार व्यक्ति इस डिप्रेशन और इस चीज में चला गया तो फिर निकालना मुश्किल है। इसीलिए जब हम ठीक हैं तो जैसे हम लोग कई चीजें अपने जीवन में अपनाते हैं, वैसे ही हम ऐसी चीजें अपनाएं जिससे कि हम हर समय सशक्त रहें और हम इस रास्ते पे कभी नहीं जाएं। और ना केवल अपने लिए, हम लोग एक फोर्सेस में, एक कम्युनिटी में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी अगर आप देखते हैं कोई व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे काउंसलिंग करो, समझाओ और वो इस रास्ते पे ना जाए। क्योंकि एक बार चला गया फिर उसको लाना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।